साहब की बार बार मेरा सवाल है कि रजबुल मुअज्जज के हवाले हमारे पास कुछ SMS चले हैं तो उसमें ये हवाला दिया गया है कि अगर इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत करीम अलैहि वसल्लम ने रजबुल मुअज्जज के रोजे रखने से मना फरमाया है, क्या कोई ऐसी रिवायत है जिसमें कि रजब के रोजे मुमन की गई हो?
इंशाल्लाह जरूर अर्ज करेंगे। रजब के हवाले से कहते हैं SMS चल रहे इब्न अब्बास के हवाले से कि रोजे रखने से मना किया गया, ऐसी रिवायत है?
देखिए, ऐसा तो नहीं है कि रोजे रखने से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया हो। रजब के रोजे के फजाइल मौजूद हैं।
ठीक है।
हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हदीस के एक बहुत बड़े इमाम गुजरे, मशहूर इमाम हैं। तो इनकी मशहूर किताब है फतहुल बारी के नाम से, जो बुखारी शरीफ की सबसे मशहूर शरह कहलाती है। यानी बुखारी की जो तशरीह की गई है बुखारी शरीफ की अहादीस तैयबा की, उसमें दो शरह सबसे ज्यादा मशहूर है। एक उम्दतुल कारी जो अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की, और दूसरी फतहुल बारी जो हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की है। तो दोनों मशहूर शुरुआत हैं, हदीस के बहुत बड़े ये इमाम गुजरे हैं। इनकी एक किताब है तबयीनुल अजब, तबयीनुल अजब बिमा वरद फी रजब।
ठीक
के रजब के हवाले से जो जो बातें जो अहदीस तैयबा आई हैं उनका इन्होंने इसमें तस्किरा किया है। तो उसमें इन्होंने दो तरह की हदीसें जिक्र की हैं। एक वो अहदीस जिक्र की हैं कि जो मौजू हैं, मन घड़त हैं, और यानी रजब के हवाले से बाज हदीसें कि जो नहीं है और वो लोगों ने बना ली, उसका तस्किरा भी फरमाया। और दूसरी वो अहदीस तैयबा जिक्र की हैं कि जो अहदीस मौजू नहीं है उनके अंदर ज़ौफ मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मन घड़त हो, मौजू हो, ऐसा नहीं, वो हदीसें मौजूद हैं
लेकिन और फनी एतबार
से उसमें कमजोरी है। लेकिन चूंकि ये कायदा है, उसूल है, तमाम जो उसूल हदीस की किताबें इसमें ये बात मौजूद है कि जो अहादीस ज़ईफा हैं, यानी ज़ईफ हदीस जो होती है कि जिसकी सनद में कमजोरी होती है वो फजाइल के अंदर मोतबर होती है। तो ये जितनी भी अहादीस आई हैं रजब के हवाले से, ये फजीलत के हवाले से आई हैं कि रजब का रोजा जो रखता है उसको अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की उस नहर में से पानी पिलाएगा कि जिसका रंग जो है वो दूध से ज्यादा सफेद है और जिसका जायका जो है वो शहद से ज्यादा मीठा है। ये बात जो बयान फरमाई, ये फजीलत है, और फजीलत में जब ज़ईफ हदीस आती है तो वो मोतबर हुआ करती है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इस हवाले से एक हदीस पाक जो ज़ईफ नहीं है वो सही, यानी हसन दर्जे की हदीस है, सुनन नसाई के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बकसरत शाबान के रोजे रखा करते थे। तो अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप इस महीने के अंदर रोजा रखते हैं, तो फरमाया कि ये महीना है कि जो रजब और रमजान के दरमियान है और लोग इससे गाफिल हैं।
सही।
यानी उलमा इसकी तशरीह में फरमाते हैं कि लोगों के नजदीक जो है उस जमाने में भी रजब और रमजान की एक अहमियत थी।
ठीक है।
कि इन दोनों में इबादत का खास एहतमाम होता था, लेकिन शाबान के अंदर नहीं करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शाबान में रोजे रखे ताकि लोगों को मालूम हो कि जिस तरह रजब में इबादत करनी है इसी तरह शाबान के अंदर भी इबादत करनी है। ये बात बयान फरमाई, तो इससे मालूम हुआ कि उस जमाने में भी रजब के अंदर इबादत का खास एहतमाम किया जाता था और उसमें रोजे की भी सूरत है कि रोजे इसके अंदर रखे जाएं, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहदीस के अंदर भी इसके फजाइल मौजूद हैं। जहां तक रहा ये बयान करना कि इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने या सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनके हवाले से मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर यह मौजूद है कि ये रजब में रोजे रखने वालों को मारा करते थे।
अच्छा,
मारते थे उनको। लेकिन इसकी वजह इसी किताब के अंदर तबयीनुल अजब के अंदर हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि तआला ने यह बयान फरमाई कि शरीयत मुतहरा इस बात को ना पसंद करती है कि मुसलमान उस चीज की ताजीम करें कि जिसकी मुशरिकीन ताजीम करते हैं। मुशरिकीन की ताजीम करदा चीजों की ताजीम करना इसको शरीयत पसंद नहीं करती। यानी इनका कोई त्यौहार है, इनका कोई मजहबी त्यौहार है, या ऐसा कोई मामला है जिसकी वो ताजीम करते हैं, तो हमारी शरीयत इस बात को पसंद नहीं करती और इसकी मुख्तलिफ सूरतें बनती हैं, हराम की, गुनाह कबीरा की, कुफ्र की मुख्तलिफ सूरतें इसकी। तो अब जो रजब के रोजे के हवाले से ये बात है कि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मारा या दीगर इस तरह की बातें हैं, तो इससे जो मकसूद है हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि तआला ये बयान फरमाते हैं कि मकसद इससे ये है कि जो शख्स उस अंदाज में रजब की ताजीम करे जैसा कि मुशरिकीन किया करते थे, یعنی رجب کی تعظیم میں مشرکین کا لحاظ کرتے ہوئے، مشرکین کی پیروی کرتے ہوئے جو روزہ رکھے گا اس کو اس طریقے سے آپ مارا کرتے تھے. ورنہ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس کے اندر حرج کیا ہے کہ بندہ رجب کے اندر روزے رکھ رہا ہو تو اس کو کیوں مارا جائے گا، جبکہ احادیث بھی اس باب کے اندر موجود ہیں. تو وہ مارنا اس بنیاد پر تھا کہ کوئی شخص اگر زمانہ جاہلیت کی رسم کو ادا کرتے ہوئے، ان کے طریقے کار کو اپناتے ہوئے، اگر ان کے پیچھے چل کر اس طرح کا معاملہ کرے گا تو اس کے لیے سزا ہے. ورنہ اگر کوئی احادیث طیبہ کو سامنے رکھ کر، شریعت مطہرہ کے عمومی حکم کو سامنے رکھ کر کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اگر وہ رجب کے مہینے کے اندر روزے رکھتا ہے تو اس میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ بات ہم نے نہیں بلکہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو نویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب تبیین العجب کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے.
ماشاءاللہ. تو اب جو حدیثیں ہیں اپنی طرف سے ان کا معنی سمجھ کر اس طرح بیان کرنا،
دیکھیں بات وہی ہے، ایک طرف کی بات سننا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے فارورڈ کر دینا یا آگے اس کے ذریعے اپنا اعتقاد اور ذہن بنا لینا، یہ درست نہیں ہوتا. اب دیکھیں کتنی باتیں ہیں اس کے اندر، کتنی صورتیں پیدا ہوتی ہیں اس کے اندر کہ کیوں جو ہے وہ منع کیا. اب جیسے مثال کے طور پر
یہ نسبت کیا کر رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام منع کرتے ہیں، جو روایت
میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو، جبکہ احادیث طیبہ موجود ہے روزہ رکھنے کی. رسول اللہ اسلام کو روزے پسند بھی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی روزے پسند ہیں. تو احادیث طیبہ کا مطلب سمجھنا ہر ایرے غیرے کا کام یہ نہیں ہوا کرتا، اس میں دقتیں ہوا کرتی ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ دقیق باتیں ہوتی ہیں، باریک باتیں ہوتی ہیں. اسی لیے تو قرآن پاک نے فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو. اگر ہر بات کو اسی طریقے سے خود سے جان لیا جاتا تو پھر اہل علم کی طرف رجوع کی ضرورت کیا تھی، کیوں قرآن پاک کے اندر اس کا حکم ہوا؟ تو اس لیے احادیث طیبہ جب اس طرح کے آئیں تو پھر علماء سے رجوع کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، جب اس کی وضاحت ہو جائے تو پھر اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے.